कैमल ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया। उसके मन में वही एक बात घूमने लगी, अगर केस कोर्ट गया तो फैसला आने में महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। और तब सानवी ने अपनी पूरी सेविंग इस रेस्टोरेंट में लगाई थी, उसकी मेहनत, उसके सपने, उसका सब कुछ यहीं बंधा था। लेकिन कैमल ने लोन लिया था, हर महीने की किस्त, बैंक का प्रेशर, ईएमआई का बोझ। अगर रेस्टोरेंट बंद रहा, अगर पैसा अंदर नहीं आया, तो वो किस्तें कैसे भरेगी? सानवी, देव गलत नहीं कह रहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी, अगर केस कोर्ट गया तो हमारा रेस्टोरेंट महीनों बंद रहेगा, और जब तक ये नहीं चलेगा मैं बैंक को किस्त कैसे दूंगी? सानवी उसकी आंखों में घबराहट साफ पड़ सकती थी। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। और अब आर्यन का गुस्सा एक पूरे सपने को खा जाने पर तुला था। सानवी का दिल और ज्यादा बैठ गया। उसे अचानक ये नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ रेस्टोरेंट हार रही है। सानवी और कैमल दोनों एक दूसरे को देखती रह गईं। कुछ सेकंड बाद कैमल ने धीरे से कहा, सानवी चलो जरा बाहर चलते हैं, एक मिनट। दोनों बाहर निकलकर रेस्टोरेंट के साइड कॉरिडोर में आ गईं। वहां थोड़ी शांति थी, लेकिन उनके दिलों के अंदर तूफान था। कैमल ने दीवार के सहारे खड़े होकर गहरी सांस ली। सानवी, हम क्या करें? कोर्ट? हम लड़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई हम झेल नहीं पाएंगे। मैं लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगी और तू अपनी सेविंग खो देगी। सानवी ने भी सर झुका लिया। उसकी आंखें भर आई थीं, मगर उसने रोने नहीं दिया। कैमल, मैं तेरे खिलाफ नहीं जाऊंगी। तू सही कह रही है, अगर केस चलता रहा रेस्टोरेंट बंद रहेगा, हमारी मेहनत, हमारी नींदें, हमारा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। कैमल की आवाज़ भर्रा गई। सपना था सानवी, और हमने कितना सोचा था इस जगह के बारे में, सानवी ने कम कपाती आवाज में कहा। सपने टूट भी जाते हैं कैमल, सानवी ने धीरे, बहुत धीरे कहा। चल देव को बोल दे, हम अपने 50% शेयर आर्यन राजवंश को बेच देंगे। कैमल ने सिर झुका दिया। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन आंसू बाहर नहीं आए। हाँ, यही सही रहेगा, उसने धीमे आवाज में कहा। कम से कम हम कर्ज में तो नहीं डूबेंगे, और तेरा पैसा भी बच जाएगा। सानवी ने हल्का सा सिर हिलाया, मगर दिल के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज टूटकर गिर रही हो। उनका रेस्टोरेंट, उनका सपना, उनकी मेहनत आज खत्म होने जा रहा था। जेसिका अपने केबिन में बेचैनी से टहल रही थी। फोन कान पर लगाए वो तेज आवाज में बोली, विक्रांत, आर्यन राजवंश को सब पता चल गया कि हमने कृति के जरिए वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे जिनकी वजह से हमें जय की कस्टडी मिली थी, और उसने कृति को नौकरी से निकाल दिया है। विक्रांत एकदम हैरान रह गया। क्या, ये कैसे हो गया? वो कुछ देर तक चुप रहा, माथे पर बल गहरे होते गए। उसका पूरा प्लान इस बात पर टिका था कि आर्यन और सानवी के बीच दूरी बढ़े, जेसिका आर्यन को इम्प्रेस करती रहे, और इसी चक्कर में वो कभी उसे छोड़कर न जाए। डर उसके चेहरे पर फैल गया, जिसे उसने छिपाने की कोशिश की। ये तुमने किया है? विक्रांत ने तीखी आवाज में पूछा। मैंने तुम्हें मना किया था कुछ भी बोलने को, जेसिका तुरंत बोली। नहीं विक्रांत, ये मैंने नहीं किया, ये सब इंद्र ने किया है। उसने पेन ड्राइव ले ली और आर्यन को दे दी। कुछ पल को कमरे में सन्नाटा फैल गया। विक्रांत ने आंखें से गोड़ ली। मतलब अब लड़की के लिए दोनों लड़ रहे हैं, इंद्र को भी सानवी चाहिए और आर्यन को भी। जेसिका की आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने गहरी सांस भरी और धीमे मगर सोच समझ कर बोला, चलो जो होना था वो हो गया, अब उस पर सोचने का फायदा नहीं। विक्रांत की आवाज़ भले सामान्य थी, पर उसके दिमाग में एक नई चाल चल रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब हमें इंद्र को अपनी साइड पर रखना होगा, वो हमारे बहुत काम आ सकता है, क्योंकि सानवी के लिए अब लड़ाई आर्यन और इंद्र के बीच है, और इन दोनों की दोस्ती अब खत्म, पूरी तरह खत्म। विक्रांत की आंखों में चमक थी, वो वही कर रहा था जो वो हमेशा करता था। कैमल और सानवी दोनों जब एक कोने में जाकर बैठी तो दोनों के चेहरों पर थकान, डर और समझदारी सब कुछ साफ दिख रहा था। दोनों ने लंबी चर्चा के बाद यही फैसला किया कि रेस्टोरेंट को लेकर अब लड़ाई नहीं हो सकती, शेयर आर्यन राजवंश को दे देते हैं, यही सही रहेगा, कैमल ने धीरे से कहा। सानवी ने आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ टूटने की आवाज उसके अंदर गूंज उठी हो। आर्यन राजवंश सुबह सुबह ही देव और अपने वकील को भेज चुका था ताकि रेस्टोरेंट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो सके, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। वो दिन भर एक कुर्सी पर बैठकर खुद को समझा सकता था, लेकिन जिस लड़की ने उसके दिल में जगह बना ली थी, जिससे वो अलग नज़र से देखने लगा था, उसी ने उससे झूठ बोला था, उसके भीतर बेचैनी का समसा रही थी। सानवी अपनी बातें अपनी सहेली से बांटकर थोड़ा हल्का हो सकती थी, लेकिन आर्यन, वो किसी के साथ अपनी टूटन बांटने वाला इंसान ही नहीं था। शिव उसके पास आया था, उसने समझाने की कोशिश की थी, उसने कहा भी था कि रेस्टोरेंट बंद करना सही फैसला नहीं है, लेकिन आर्यन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बिना कुछ बोले, बिना पीछे देखे वो उठकर निकल गया। उसे लगा शायद काम की जगह, शोर, मशीनों की आवाज़, कुछ तो होगा जो उसकी बेचैनी को दबा देगा, और वो सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया जहाँ उनका प्रोजेक्ट चल रहा था। इसी बीच इंद्र सानवी से मिलने आया। जैसे ही उसने सानवी का उतरा हुआ चेहरा देखा, उसे सब समझ आ गया। सानवी ने धीरे से बताया कि आर्यन ने रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला कर लिया है। इंद्र का गुस्सा उबल पड़ा, फिर उसने सानवी को ऑफर दिया, अगर ये रेस्टोरेंट बंद हो रहा है तो तुम मेरे क्लब में शेफ बनकर आ जाओ, तुम्हें मैं रखना चाहता हूँ। सानवी की आंखें भर आईं। इंद्र, अभी नहीं, अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी नई बात के बारे में सोच सकूं, कृपया कुछ समय दो। इंद्र ने उसकी हालत देखकर जिद नहीं की, वो बस गहरी सांस लेकर वहां से निकल गया। इंद्र सीधा आर्यन के पास जाता है। इंद्र गाड़ी मोड़कर सीधा आर्यन के ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला सर कंस्ट्रक्शन साइट पर गए हैं। इंद्र के भीतर अब गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ चुकी थी। वो जानता था कि आर्यन जो कर रहा है वो गुस्से में कर रहा है, और ऐसे गुस्से वाले फैसले हमेशा किसी न किसी का नुकसान करते हैं। वो फौरन कार मोड़ता है सीधा उसी तरफ जहां आर्यन अपनी बेचैनी से लड़ रहा था। इंद्र तेज कदमों से कंस्ट्रक्शन साइट में घुसा। उसे अभी अभी पता चला था कि आर्यन ने सच में रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला कर दिया है, और ये बात जानकर सानवी कितना टूट गई है। इंद्र उसे दुखी देख नहीं सकता था। आर्यन एक बीम के पास खड़ा था, नीचे चलते काम को बस खाली नजरों से देख रहा था, जैसे शोर उसके अंदर की चुप्पी मिटा नहीं पा रहा था। इंद्र ने दूर से ही आवाज लगाई, आर्यन तुमने क्या किया है? आर्यन ने मुड़कर देखा, फिर एक ठंडी थकी हुई आवाज में बस इतना बोला, मुझे वो काम नहीं करना, बस मामला खत्म। इंद्र सीधा उसके सामने खड़ा हो गया, और तुम अब ये मत कहना कि तुमने गलत नहीं किया। आर्यन का चेहरा सख्त था, क्योंकि तुमने बहुत गलत किया है। इंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, अपने रेस्टोरेंट के 50% शेयर मुझे बेच दो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, पहली बार उसे कुछ असहजता महसूस हुई। क्लब पहले ही मेरा है, अब रेस्टोरेंट भी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी और सानवी की अच्छी बनती है, हमारी सोच भी मिलती है, हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे। उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली, मैं चेक लेकर ही आया था। आर्यन चुप रहा, उसका चेहरा कड़ा था पर आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहा था। उसी वक्त इंद्र का फोन बजता है, सब कुछ बदल जाता है। फोन रिया का था। इंद्र ने जल्दी से रिसीव किया। रिया, क्या हुआ? उधर से हड़बड़ाई हुई आवाज आई, इंद्र सानवी और कृति जा रही हैं, हमेशा के लिए, वो स्टेशन की तरफ निकल चुकी हैं। क्या रिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद अभी पता चला, सानवी रेस्टोरेंट से आई और बिना कुछ बोले अपना सामान पैक किया, कृति को साथ लिया और दोनों निकल गईं। इंद्र बिना कुछ और सुने फोन काट देता है। उसने एक पल के लिए आर्यन की तरफ देखा।
वो समझ नहीं पा रहा था कि गुस्सा करे या उसे झक छोड़ दे। इंद्र की आवाज टूट गई, आर्यन वो जा रही है हमेशा के लिए। इंद्र ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, सानवी और कृति दोनों शहर छोड़कर जा रही हैं। इंद्र पीछे मुड़ते हुए बोला, मैं सानवी को रोकने जा रहा हूं। वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ता है। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, उसकी सांसें भारी, दिल धड़कता हुआ और दिमाग खाली।